ओम शांति। आज की साकार मुरली 4 जुलाई 2023 बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल दे, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। अगम निगम का भेद सुनाकर कैसे हम इस संसार में आए और कैसे इस संसार से हम जाते, आवागमन, इसको आवागमन, इसको निगम कहा इन्होंने, क्योंकि हम आत्माएं कैसे परम धाम से इस संसार में पाठ बजाने आती हैं और कैसे हम चाहती हैं, ये भेद सुनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती, प्रजा में कौन जाते, राजा कौन बनते और प्रजा में कौन चले, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते, 21 जन्म कहाँ चले जाते हैं, तो यहां पालना नहीं की ना, बने तो सारे बाबा के बच्चे तो सारे बने, परंतु उन्होंने पालना बलिहार नहीं गए, कुर्बान नहीं गए। कुर्बान जाने का मतलब अपने दिव्य गुणों को अच्छी तरह धारणा या पालना, आपको चलाया नहीं, धारणा तो उन्होंने की परंतु पूरी तरह नहीं, पालना नहीं। हाँ, मतलब काफी कुछ मशवरे से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने चर्चा किया, मैंने कहा चलो जब तक कोई नहीं है तो हम चर्चा करें। मतलब कहने का है कि प्रजा में चले जाते हैं, क्योंकि चर्चा करने से बात निकलती है। तुम श्री मत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक ले, और जब श्री मत पर चलते हो और योग बल से, योग बल हमें याद है ना, क्योंकि जितना जितना बाबा की श्री मत पर चलने के अनुभवी बनते जाते हैं उतना शक्ति बढ़ती जाती है, उसके आधार से हमें राजाई का तिलक, और वो तिलक हम करते हैं तोल मिलता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए यहां खुद लिखा है कि श्री मत पर चलकर अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हैं, अपने आप लेते हैं, कोई तिलक ऐसे नहीं आके लगा देगा, यहां हथियार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्योंकि जितना भांग को घोटेंगे उतना नशा चढ़ेगा, तिलक तिलक लेते हैं, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है, बुद्धि योग के बल से, जितना जितना बुद्धि का योग होगा बाबा के साथ उतना ही आप क्या बनेंगे, माया जीत, और फिर बनेंगे जगत जीत, क्योंकि माया जीत ही जगत जीत बनेंगे, बोले नाथ से निराला और कोई। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त, जरूर भक्तों की रक्षा करने वाला तो कोई है ना, तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं, भक्तों पर कोई आफत आई है तो जरूर भक्तों की रक्षा करने वाला बाबा आया है, आफत में आए हुए हैं भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है, जो आफत में फंसा है, इन भक्तों की को का रक्षक शिव बाबा है, भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं, इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं, आसुरी संपत्ति है। वो सारे क्या हैं जो पुरुषार्थ करा रहे हैं सारी दुनिया में, वो सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा, उसके बाद सच्चा, अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ पापी कराते। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते। माँ बाप भी हद की बातें सिखाएंगे, टीचर भी हद की बातें सिखाएंगे, और दुनिया वाले गुरु भी हद की ही बातें सिखाएंगे। बेहद की नॉलेज कोई दे नहीं सकता सिवाय बेहद के बाप के। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पुरुषार्थ करेंगे। कुछ भी बन लो, डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो, टीचर बन लो, जो मर्जी का बन लो, तो अगले जन्म में फिर वही दोबारा से बनना है जो बनना है। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रलब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वे भी अल्पकाल का सुख, वे भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रलब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ है, ये भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, सच बोलता है बाबा, बाबा सच बोलता है। पता नहीं, मेरे को लगता है कि झूठ बोलता है बाबा, नहीं सच बोलता है। सोच करके देखो, मेरे को लगता है कितने सारे झूठ बोलता है बाबा, नहीं वो है सत्य। हम कहते हैं कि वो सत्य है, परंतु बोलता तो झूठ है। मिला है कोई झूठ आपको? हाँ, वह कहता रहा इतने टाइम तक युक्ति से। युक्ति से बोला बाबा, जो झूठ को युक्ति बदल दिया। झूठ बोलो छुट्टी दी है, परंतु उसका नाम झूठ की जगह क्या कर दिया, युक्ति कर, क्योंकि सिखाने की युक्ति है। क्योंकि बहुत सारी बातें बोला, हमें शुरू में इतना बुद्धू बनाया बाबा ने, कहते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम सोचा चलो ये सनातन धर्म वाला ज्ञान है ये, तो ये नहीं पता था बाद में बदल जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है ही नहीं, परम धाम सूक्ष्म वतन ये है ही नहीं। हाँ, मतलब शब्द उसके लिए दे दिया बाबा ने युक्ति। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बताते, सृष्टि में आना जाना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग का रास्ता जानते ही नहीं, बताएंगे तो तब। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर गुरु है, ये बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कह, श्री कृष्ण को कोई बाप नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सारे कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बच्चा है, उसने खुद जन्म लिया, कृष्ण की शादी नहीं हुई। हाँ, शादी नहीं की उसने, कृष्ण की तो शादी दिखाई नहीं है, राजा के साथ शादी हुई नहीं और सत्यभामा रुक्मिणी तो एम ही बाद में लगा दिए उसके साथ कहानियां गढ़ दी, और या 16108 की भी कहानियां गढ़ दी। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, टीचर भी नहीं कहेंगे कभी बैठ के पढ़ाया नहीं, सतगुरु भी नहीं कहेंगे कि वो खुद संदीपनी टीचर के गुरु के पास पढ़ने गया, खुद ही गुरु धारण किया, तो ना टीचर ना गुरु ना बाप। अब जिसका बाप बाप हो, टीचर हो, सतगुरु हो, वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। गुरु शुरू हुए हैं द्वापुर से, गुरु कब से शुरू हुए, द्वापुर से। सत्युग त्रेता में गुरु होते नहीं, सत्युग त्रेता में गुरु होते ही माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। किसने स्वर्ग बनाया पिला, अमृत पिलाया, अमृत किसने पिलाया? हां जी ब्रह्मा को कहे या गीता को कहे, माता गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, इसके मुख से ज्ञान दिया, इसके मुख से ज्ञान दिया, ये माता है। परंतु बाबा कह रहे हैं कि माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार, क्योंकि ब्रह्मा ही ज्ञान देने के निमित्त बना, स्थापना के निमित्त बना, ब्रह्मा ही पालना के निमित्त बना। किया बेशक शिव बाबा ने, पर तो निमित्त तो माँ है ना। बाबा कहते मैं बच्चे पैदा किससे करूं, माँ के द्वारा करूंगा ना, तो पालना भी माँ के द्वारा ही होगी। तो ब्रह्मा का रोल, शंकर का रोल, विष्णु का रोल, तीनों पिलाकर, क्योंकि स्थापना शिव बाबा कहते मैं तो स्वर्ग बनाऊंगा नहीं, शिव बाबा तो स्वर्ग की ईंट रखे गए नहीं। इसको कुछ मत समझो, इसको कुछ मत समझो, क्योंकि सारा कराने वाला, करण करावन हार तो मैं हूं, परंतु इनके द्वारा स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार, फिर वहां आपको कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मतलब ब्रह्मा बाबा जो है ना, हमारा गुरु भी बना ना, माता गुरु साकार में तो यही है हमारे सामने। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं, सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया, बाबा ने सबको कहां खड़ा कर दिया, युद्ध के मैदान में, वरना हमें पता ही नहीं था, हम इन विकारों को अपना जीवन समझे बैठे थे। अब बाबा ने कहा कि ये विकार ही तुम्हारे क्या हैं, दुश्मन है, तुम्हारी लड़ाई ही इन पांच विकारों के साथ है, पांच विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बन। हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन, श्री कृष्ण माया जीत बन, जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना, जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। अब इसे जगत का प्रिंस मतलब एक ही प्रिंस, बाकी कोई प्रिंस नहीं बना, जगत का प्रिंस बना अकेला, जगत का अकेला प्रिंस, प्रथम प्रिंस। जब ये प्रिंस बनता है तो कोई और प्रिंस नहीं होता। ये दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है, बाबा ने मुरलियों में इस बात को भी खोला, क्योंकि अब तो कोई राजा है ही नहीं, मुरलियों में इस बात को, मुरली ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अब तो कोई राजा है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई राजा नहीं है, है तो वो राजा कहने के लायक ही नहीं है, चाहे इंग्लैंड का राजा कहो, या कुछ मुगल कंट्रीज हैं जहां अभी भी वो राजाई वाला रूप चला आ रहा है, या नेपाल का राजा कहो। अब राजा वो राजा तो है ही नहीं, उनके हाथ में कोई पावर है ही नहीं, पावर सारी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हर एक जहां भी है वहां पर थोड़ी बहुत तानाशाही चल रही है तो चल रही है, तो बाकी तानाशाही ज्यादा किसकी चल रही है? सब जगह अपने जो मिनिस्टर को संभालते हैं, वर्क को संभालते हैं, वही काम जिसके हाथ में। तो जगत का प्रिंस मतलब पूरे जगत का, मतलब जरूरी नहीं कि वो राजा का बेटा हो तो उसे प्रिंस कहा जाएगा, जो राजा बनने के लायक हो वो प्रिंस हो। हाँ, तो राजा था। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने बुद्धि में क्लियर करनी है, क्योंकि वहां पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलना। जो बहुत सारे भाई बहनों का यही प्रश्न मेरे पास आता है कि आप बताओ, क्योंकि जो एक बार देख लेते हैं ना कृष्ण का जन्म हो गया है तो सीधा फटाफट क्वेश्चन लिख करके भेज देते हैं, बताओ यहाँ कोई राजा है? राजा होगा तो कृष्ण का जन्म होगा ना, किस राजा के घर जन्म लिया है? है कोई ऐसा जो राजा का जन्म दे सके? तो 2036 में सूरज भाई बता रहे हैं, तो वहां कौन सा राजा पैदा हो जाएगा? वहां कौन सा राजा पैदा हो जाएगा? मतलब राजा कोई पैदा होने वाला नहीं, सूरज भाई या इसकी बात लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का है कि बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया कि इस समय राजाई है ही नहीं, सारी प्रजा का प्रजा पर राज्य है, परंतु योग्यता जिसमें वो गुण वो संस्कार होंगे कि वो प्रिंस राजा बनेगा, तो वो संस्कार अभी लिए जाएंगे ना, तो वो संस्कार धारण किए ब्रह्मा बाबा। प्रजातंत्र से राजतंत्र आना है ना, राजा से राजा नहीं बनना। अरस्तु का साइकिल याद आता है ना, अरस्तु का साइकिल मतलब पॉलिटिक्स का फादर है, कमाल का है उसका, और उसने भी सृष्टि, हाँ सृष्टि चक्र जो है उसने कहा, सृष्टि चक्र 6000 साल का है अरस्तु ने, और उसके गुरु ने कहा 60000 साल का है सुकरात, 60, और उसने कहा कि 6000 साल का है अरस्तु ने, और सुकरात ने उसका जो गुरु है उसने कहा 60000 साल का है, और पॉलिटिक्स की पहली बुक अरस्तु ने लिखी, उसके गुरु ने नहीं लिखी, उसने लिखी है पॉलिटिक्स, उसकी जो बुक है सबसे पहली, और उसने कहा कि पहले पहले एक राजा होता और वो मैं सत्व प्रधान शब्द यूज करूं मतलब वो परफेक्ट होता है, उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, परंतु जब वो भ्रष्ट होता है, राजा जब भ्रष्ट होता है तो दो राजा होते हैं, मैंने दूसरा मंत्री या कोई नेचुरल भ्रष्ट होगा ही ना। एक राज्य है, राजा चल रहा है, एक राज्य चल रहा है, अच्छा चलता रहता है जब तक भी चला, तो उसने कहा जब राजा ही भ्रष्ट हो जाता है तो मंत्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो अयोग्य हो जाता है, वो अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है तो मंत्री आता है, मतलब राज्य दो के पास जाता है, राजा के पास भी और मंत्री के पास भी, या धर्मगुरु अलग और प्रशासन का अलग, मतलब इस प्रकार से। और जब तक वो ठीक था एक था, जब वो भ्रष्ट हुआ तो खराब हो गया, खराब हो गया तो राज्य संभाला दो ने, फिर राज्य जाता है क्या बोलते हैं प्रजा के पास, प्रजातंत्र, ठीक है। और जब प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो उसने अपनी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि प्रजातंत्र इज द वर्स्ट गवर्नमेंट, वर्स्ट सबसे गंदी गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, मतलब प्रजा जब प्रजातंत्र होगा तो सबसे गंदी सरकार होगी। अब देखो कि उस समय कोई भी कहीं भी प्रजातंत्र नहीं था, मतलब ये उसकी इमेजिनेशन है, अब से लगभग 2000 साल पहले उसने लिखी है अपनी पुस्तक, परंतु उसने उस समय जो इमेजिनेशन की वो आज एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद उसने लिखा कि प्रजातंत्र जब वस्त हो जाएगा अति के बाद फिर एक राजा होगा, یہ ایک سرکل ہوگا, اس کو ارسٹوٹل کا سرکل کہتے ہیں, ارسطو کا سرکل. مطلب اس نے بڑا اچھی طریقے سے یہ سمجھایا. تو جب پرجاتنتر کے بعد راجتنتر آنا ہے تو پرجا سے راجکمار کیسے پیدا ہو سکتا ہے نا؟ تو وہ ابھی مطلب شاہی سنسکار اپنے ایسے بنائے گا جو سب اس کو راجا سویکار کریں گے, اور پہلے سے نشچت ہے کہ یہ راجکمار ہوگا. بابا نے اسپشٹ کیا نا کہ راجکمار ہوگا, کیونکہ وہ اپنے ایسے سنسکار بنا کے جائے گا اور وہ جنم لے. اور اس کو دیکھو کہ دنیا والے میں بھی دکھایا کہ کرشن کا جنم جیل میں ہوا, تو اس کا باپ راجا تھا نا, تو جو جیل میں وہ راجا تھا نا کہلائے گا بھائی. جو راجا چاہے بے شک راجا ہو, راجا رہا ہو, پر وہ جو جیل میں ہے وہ راجا کیسے ہوگا؟ پھر نند بھی کوئی راجا نہیں تھا, نند بھی اپنے گاؤں میں رہنے والا تھا, ٹھیک ہے نا, نند گاؤں میں, تو وہ راجا تو نہیں تھا, تو اسے ہم راجکمار کیوں کہیں گے؟ اسے کیسے کہیں گے راجکمار ہے وہ؟ تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ شری کرشن کا چتر ہاتھ میں اٹھائے سمجھانا ہے کہ یہ نہ باپ ہو سکتا ہے, یہ نہ ٹیچر ہو سکتا ہے, اور یہ نہ گرو ہو سکتا ہے. اور تم بچیاں جانتی ہو کہ ہم یدھ کے میدان پر, ہم یدھ کے میدان پر ہیں, مایا جیت جگت جیت بننا ہے. جیسے شری کرشن جو پھر شری نارائن بنا, پھر ان کے ساتھ اور بھی ساری راجدھانی تھی, تو وہ سب ضرور یدھ کے میدان میں ہوں گے. وہ سب کہاں ہوں گے؟ یدھ کے میدان میں ہوں گے, جو مایا پر جیت پاتے ہوں گے. 5000 ورش کی ہی تو بات ہے, سارا کھیل کتنا ہے؟ 5000 سال کا ہے. پہلے یہ شری کرشن بھی اپنے انتم جنم میں, شری کرشن بھی انتم جنم میں یدھ کے میدان میں تھا. شری کرشن بھی لاسٹ جنم میں, لاسٹ جنم کون سا ہے شری کرشن کا؟ برہما بابا. لاسٹ جنم شری کرشن کا ہے برہما بابا. اور پہلا جنم شری کرشن, پہلا جنم شری کرشن کہیں گے, پہلا جنم نارائن نہیں کہیں گے, جبکہ ہے ایک ہی بات. بڑا ہو کر کے نارائن بنے گا, پرنتو جب جنم لے گا تو وہ شری کرشن کے روپ میں ہی لے گا. 5000 ورش پہلے شری کرشن بھی اپنے انتم جنم میں یدھ کے میدان میں تھا. ویسے اب یہ بھی یدھ کے میدان میں ہے. یہ تو انتم جنم کیا ہے؟ برہما. انتم جنم برہما, یدھ کے میدان میں کھڑا کر دیا نا اس کو. ویسے اب یہ بھی یدھ کے میدان میں ہے, برہما بھی یدھ کے میدان میں ہے, تم بھی یدھ کے میدان میں ہو, اور گیتا کا گیان بھی یدھ کے میدان میں سنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یدھ کون سا ہے یہ دنیا والوں کو پتا. پانچ پانڈو بھی اوپر پہاڑوں پر چلتے چلتے گل کر مر گئے, مطلب وہ بھی شریشٹھ بنتے 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 وہ بھی شریر چھوڑ کر کے گھر جاتے ہیں. پانڈو بھی تو شریر چھوڑ کے, مطلب اب ہمیں کلیئرٹی آتی ہے, اب ہمیں وہ سین سمجھ میں آتا ہے, پرتو تب ہمیں سمجھ میں ویسے آتا تھا جیسے ہم پڑھتے تھے. اب جیسے بابا ہمیں چشمہ دے رہا ہے تو بابا خان جی ہاں ہاں کوئی بھی نہیں, یہ تو ویاس نے بیٹھ کے اب لکھا 2000 سال پہلے. ہاں اب ہمیں سمجھ میں آتا نہیں, گیتا تو پہلے سنائی دی, پر گیتا वो तो बताया है ना, वो तो बताया कि व्यास ने, व्यास खुद ही उसमें था, तो व्यास उसका खुद ही करेक्टर है, समझे।
व्यास अपने उस शरीर में तो नहीं बैठ के लिखेगा।
नहीं मतलब कहने वाला, व्यास ने कहा कि मैं जो है कंदरा में बैठा हुआ था, और वो तो लिखा, वो तो वो लिखा भी उसने खुद नहीं, वो उसने लिखा पास में गया, परंतु उसने तो वहां तो लिखा है कि मैं जो है संजय को दूर दृष्टि दे करके आया। मतलब महाभारत में तो ये है ना कि व्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी कि तेरे को यहाँ घर में बैठे, महल में बैठे ही कुरुक्षेत्र का सारा सारा सीन जो है ना दिखाई देगा, और महाराज को तुमने, धृतराष्ट्र को यहीं पर बैठकर तुमने सुनाना, और मैं वहां लिखूंगा बैठ कर। कैसे तो कैसे कहानी गढ़ते है नहीं? और आंखें बंद करके हम इसे सत्य स्वीकार किए बैठे। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में हो, पांच विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है, इसको कहा जाता है नारायणी नशा। हमें नारायण बनना है, ये नशा कृष्ण बनना है नहीं, बनना है हमको नारायण, नारायणी नशा, माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है, सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां। सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं सबको, सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं, वहां कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे वे तो पवित्र दुनिया है, तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं तो दुनिया खत्म हो जाती है क्या? वो पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़कर जाते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है, सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है, सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले जाकर माथा टेकते। जो सन्यास करके गया तो जो सन्यास नहीं किया विकारी बना वो जाकर माथा टेकता है। जिसके लिए हम दूसरा एग्जांपल बाबा देते हैं, कुमारी है शादी नहीं है, सारे उसके बड़े बूढ़े सब उसके पांव छूएं, तुम कन्या है पवित्र है, और जैसे ही शादी की अगले दिन से शुरू हो जाओ, सारे जितने पांव छुआए हैं सारे छुओ, बराबर करो अपना हिसाब किताब। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती, उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये जो टीचर्स बहने हैं ये माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है, जो विजय माला में आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ, अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। युद्ध के मैदान में हमें क्यों खड़ा किया है? श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, अभी तो कोई भी नहीं इसको राजा महाराजा कहला सके, ना प्रिंस प्रिंसेस किसी को कह सकते, ना तो हम किसी को राजा महाराजा कह सकते हैं, ना किसी को हम प्रिंस प्रिंसेस कह सकते हैं। अब तुमको बाप के देवी मत मिलती है, अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है, ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बना, असुरों को देवता बनाती हैं, देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। एक है विकारों का बंधन और दूसरा फिर है कर्म बंधन। कर्म बंधन जो हमने कर्म किए हैं, सुख दिया है तो भी बंधन है, दुख दिया है तो भी बंधन है, और एक विकारों का बंधन है। विकारों का बंधन वर्तमान है और कर्मों का बंधन भूतकाल का है। विकारों का बंधन वर्तमान में है, मतलब हम खुद ही फंसे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी विकार में जाने का, तो हम वर्तमान में हम रिस्पॉन्सिबल है, हम चाहें यूज करें चाहे तो नहीं करें। और कर्म बंधन तो हमारा जो कर चुके हैं वो तो हमने बराबर करके घर जाना है ना, उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम उनसे छूटेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आत्मा जाए और परमात्मा में मिले और एक हो जाए तो खत्म। ना कोई ज्योति ज्योत समाता समाया है, ना सामान है सामन समाने है, ना समाया है ना समाने है, ठीक है। क्योंकि समा जाए आत्मा, ज्योति ज्योत समा जाए तो जड़ हो गई, खत्म हो गई। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, क्योंकि पतित शरीर में पवित्र आत्मा रह नहीं सकती। आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर ये शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेगा। ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते, ये शरीर जो ये शरीर है ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, तमो प्रधान है। बोलो बोलो, उनके जो माता पिता हैं उन्होंने निर्विकारी गर्भ धारण, तो वो जो तत्व हैं जो विकार नहीं वो सतो प्रधान। अभी आगे इस बात को भी बाबा ने एक इशारा दिया है, उस इशारे में तड़वार लेगा, जो भी लेगा आत्मा के साथ साथ आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर का भी पवित्र होना जरूरी है। उसको आगे 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 बाबा ने एक इशारा एक आधी लाइन के अंदर ही इशारा दिया है, मतलब उसको वहां ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां हम उसको समझे, यानी यहाँ पर अभी मैं इसको सोच रहा हूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ये मैंने बाकी क्लास में इसको मैंने वहां चर्चा नहीं किया, वहां मेरे को आया परंतु वहां इसकी चर्चा करने वाले सामने नहीं थे, इसलिए मैंने उस पॉइंट को वहां चर्चा नहीं किया। तो वहां मैंने सोचा था कि चर्चा करेंगे। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है, ये भी बाबा झूठ बोलता है, पकड़ना इसका झूठ। बाबा कैसे झूठ बोलता है? श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं, दो बार क्यों कहते हैं, किसके लिए कहते हैं श्री श्री? अब तक आपने सुना हो मुरलियों में श्री बाबा के लिए, श्री बाबा के लिए ना, किसी और के लिए तो नहीं कहते ना। कहते देवताओं के लिए एक श्री लगेगा, मेरे लिए दो श्री लगेंगे, ठीक है कि नहीं? आज देखो झूठ बोलता है बाबा, ठीक है कि नहीं? अब इसकी युक्ति बता दा, अब युक्ति किसको समझ में आती है, इस चूस को युक्ति कैसे करोगे। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य। अच्छा जवाब दे रहे, तो देखो क्या जवाब दे रहे, फिर से देखो। क्योंकि सूर्य वंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंचते ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है उनका, शरीर भी पवित्र है, उनको 16 कला संपूर्ण कहें। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे और लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। अब बताओ, अब मुझे बताओ, अब मर्जी है बाबा की।
तो दो कला तो
आज श्री श्री पहले ये बताओ कि आज की मुरली से, आज की मुरली से पहले तो ये मुझे बताओ कि श्री श्री दो बार लक्ष्मी नारायण के साथ क्यों लगाया। शरीर भी पवित्र है, और कल तक हम सुनते थे कि श्री श्री शिव बाबा के साथ लगता है, उसकी तो आत्मा, उसका तो शरीर ही नहीं है, उसके साथ डबल क्यों लगता था श्री। अब बताओ कौन झूठा है, शिव बाबा झूठा है कि नहीं है, बताओ। हाँ बच्चे भी जय श्री, तो फिर झूठ बोला ना। अब बताओ झूठ है कि सच है, अब युक्ति बताओ कौन सी युक्ति लगाई है यहाँ पर। ऐसा है कि बाबा कहते मैं आप समान बनाता हूँ, ठीक है ना, जब मेरे समान बनते हैं, इसलिए एक और भी साथ में एग्जाम्पल ले लें कि मैं भगवान भगवती बनाता हूँ, परंतु उनको भगवान भगवती कह नहीं सकते। हाँ ये लाइन समझ, मैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाता हूँ परंतु उनको भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि वो मैं हमेशा एवर प्योर हूँ ना, मैं पांचों कंट्रोल, पांचों तत्वों को कंट्रोल कर लेता हूँ ना, तो उनको भी पांचों तत्वों को कंट्रोल करना सिखा देता हूँ, परंतु वो धीरे धीरे उन पांचों तत्वों के वशीभूत होने लगते हैं, तो जब गिरना शुरू हो गए तो उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। चाहे एक सेकंड गिरे तो एक सेकंड में गिर तो गए ना, एक घंटे में गिर तो गए ना, एक दिन में परिवर्तन तो आ गया ना, इसलिए उनको केवल जब समान है तब, क्योंकि वो समानता का उनको पता नहीं लगेगा, ये समानता का नए बच्चों को समझ में नहीं आएगा, परंतु हम इस बात को समझ सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते उनको भगवान भगवती, क्योंकि वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गए, और उनके साथ डबल श्री केवल तब लगेगा इन द बिगनिंग जब वो बाप समान है, परंतु जैसे ही उनमें गिरावट आई तो आत्मा भी 99.999 हो गई, 0.000 डाउन आ गई, तो हम उन्हें दो श्री नहीं देंगे। मतलब ये बारीक बात को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। तो उसके बाद तो जो भी है सारे, अब बाबा इतनी बातें गहराई से बातें उस समय करे, ये बड़ा टफ था उस समय, क्योंकि नए नए बच्चे बैठे हैं, उनको तो सिर्फ मोटी मोटी बात कि उनको राजा कहेंगे, उनको महाराजा इसको क्या है, श्री श्री कहेंगे उनको श्री। आज बहुत सारी बातें हैं ऐसी बाबा की मुरली में, वे है महाराजा महारानी, अब ध्यान देना, और राम सीता है राजा रानी, लक्ष्मी नारायण है महाराजा महारानी, उनके साथ डबल श्री लगा दिया, इनके साथ एक श्री लगाया, इनको सिर्फ राजा रानी, नंबर वार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है, जहां भी महाराजाएं और राजाएं हैं, यहां भी आज दुनिया में कह रहे हैं, यहां भी महाराजाएं राजाएं हैं, बड़े को महाराजा कहा जाता है, छोटे को राजाएं कहा जाता है, राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे, महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं तो अब श्री मत पर चलना है। श्री श्री अब अपने लिए आ गया, श्री श्री जगत गुरु, जगत गुरु शिव बाबा और तो कोई है ही नहीं ना, रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वे है, टीचर भी वे है, तो गुरु भी वे है। आगे आ जाओ या तो पंखा चला लो। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल है, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा दाना डालेगा, हम दाना चुगेंगे, जाल में फंस गए, जाल में फंसने से पहले हम उड़ जाएंगे। अब वो जाल में फंस भी गए तो फिर भी गा रहे थे, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा दाना डालेगा, हम उससे पहले जो जाल खींचे उससे पहले हम उड़ जाएंगे। अरे भगवान कहते हैं कोई छुड़ावे, तोते मिसल कहते हैं, अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूं। तोते मिसल कहते हैं, सुधरते नहीं है, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वे जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े, इस कब्रिस्तान को क्या याद कर, यहां रहना भल यहां है परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम। कुछ गांव बुद्धि लगानी है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, नष्टो मोहा भी बनना है। वो है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने लिए मेहनत करनी पड़े, बिना मेहनत के तो श्री कृष्ण बन नहीं सकते। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है, इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वो तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं, पतितों को पावन करने वाला भी वे है, जगत का मालिक भी वे है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ, ये तो नॉलेज है, ये तो ज्ञान है, नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है और कोई को ये नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं, यहां हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा, कोई बात करने के लिए आई नहीं, जरूरत ही नहीं, बिठा दिया। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, मरने वाले हो ना तो भी आकर बैठकर सुनो। तो बाबा स्ट्रेचर पर भी मंगाते थे, आ जाओ कुर्सी पर भी आके बैठ जाओ, लेट जाओ, परंतु शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, फिर अंत में सो गति हो जाएगी। नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे ना मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गंवा देंगे। भक्ति का फल भी अपना मिलने वाला भी क्या करेंगे, गंवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं, रखवाला है भोलानाथ, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है, श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण, और जब चंद्रमा एकदम कंप्लीट होता है वो 16 कलाएं गिनते रहते हैं, नृत्य कला, संगीत कला, चित्र कला, मूर्ति कला, दुनिया भर की कलाएं गिन गिन करके उनका फिर बताते हैं ये सारी कलाएं अपने में लाओ तो श्री कृष्ण के पास में। तो कितना बाबा क्लियर कहते हैं, श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा जिसमें जरा भी कमी नहीं, 16 कला संपूर्ण। जब चंद्र वंशियों का समय आता है तो वो भी अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए? हम नापास क्यों बने? फुल पास होना चाहिए ना। तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझना समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी जहां है, अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े की दौड़ चलती है, होर्स रेस चल रही है, सबको दौड़ना है। हमने कैसे दौड़ना है? बुद्धि योग से। हमने बुद्धि योग से दौड़ना है, टांगे नहीं थकानी अपनी। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, अर्थात बाप समान, अर्थात बाप समान बनेंगे। विकर्म विनाश होंगे, बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है, जो सृष्टि पर विजय पाएंगे? क्या हथियार है तुम्हारे पास, कैसे पाओगे सृष्टि पर? बाबा ने एक्ट करके दिखाई, हम बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बन रहे हैं। बुद्धि योग बल से, अब ये बुद्धि योग के साथ बल भी लगा दिया, खाली बुद्धि योग था, अब बल लगा दिया। मतलब हम बाबा की श्री मत पर चलते चलते जितना अनुभवी बनते जाएंगे उतना बल बढ़ता जाएगा और हम माया को जीत कर जगत जीत बन जाएंगे। हम निष्ठा, हाँ नहीं दिखाई, हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में, अर्थात श्री मत को अपनी बुद्धि में मंथन करना ही निष्ठा में बैठना है, ना कि चित्र को देखना। बुद्धि वहां लटकी हुई, बुद्धि शिव बाबा के साथ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है, क्या कहा है? पवित्र बनना और कोई को याद नहीं करना, सॉरी, पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वे तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़, देही अभिमानी बन जाए। जब हम देह का अभिमान तोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद कर। हमारा पुराना हिसाब किताब चुप्त होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में, कहां हैं हम? युद्ध के मैदान, आज की मुरली में बाबा रटवा रहा है, खड़ा कर रहा है, युद्ध के मैदान में हो, ध्यान से। फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार, हम कहां हैं? युद्ध के मैदान में, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। ये है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, वहां धन आदि सब अकीचर रहता है, पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। और यही बात दुनिया वाली भागवत में भी लिखा गया कि पहले साक्षात्कार कराया कि मैं तुम्हारे पास जन्म ले रहा हूं, पहले साक्षात्कार कराया फिर बच्चा बन के आ गया, मतलब दुनिया वाली में लिखा गया। अब यहां पर बाबा क्या राज खोल रहे हैं? हाँ जी, आगे दिया है बाबा ने, यही अगली लाइन यही है जिस पर उन्होंने चर्चा करनी है। बच्चा आने वाला है, वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं, ठीक है ना। तो मोर को दिखाते हैं कि उसके आंसू गिरते हैं और मोरनी लेती है, नहीं मतलब वो भी मतलब पहले था ना, तो मतलब कहने का है कि सच्चाई जो कभी पवित्रता रही आज मोर पवित्र नहीं है, मोर भी पतित हो गया है, वो एक अलग विषय है, परंतु ये भी है, ठीक है ना, कि ये भी मतलब ये जो आंसू गिरना और गर्भ धारण होना ये भी नीचे का है, मतलब ये भी पवित्रता बहुत तमो ओज जो है जब मतलब लिक्विड से भी ऊपर हो जाता है तब वो ओज जो है ना सही परिपक्व अवस्था होती है, जिसको केवल संकल्प से ही ट्रांसफर किया जाता है, उसे केवल संकल्प से ही ट्रांसफर किया जाता है। नहीं 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 मतलब नहीं नहीं मैं इसको क्योंकि मैं अभी तक जो रिमोट देता है ना, जिससे क्या होता है कि अब यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, मतलब ऊपर किसी भी ग्रह को हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, एक तरंगी तो भेज रहे हैं, रिमोट से हम एक तरंगी भेज रहे हैं जो वहां जाकर उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है नहीं। हम उससे फोटो लेना चाहते हैं, उसको आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ भी करना चाहें हम सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से कर लेते हैं, आज सारे घर को भी हम रिमोट कंट्रोल से चला लेते हैं, सब कुछ मतलब हो जाता है। तो जब एक तरंगी तो है, तो ठीक इसी प्रकार संकल्प भी एक तरंग है, जब ओज इस स्टेज पर हमारा तैयार हो जाता है तब वो उस संकल्प के साथ साथ ही हाँ वहां जाकर के आरोपित हो जाता है, तो वहां जाकर तो जब वो सामर्थ्य नहीं रहती तो आंसू के रूप में लेते हैं, फिर ओरल लेते हैं, फिर ये लास्ट हमारा जो आज विकारी आया है ये आया है। तो मतलब कहने का मेरा कि बाबा मतलब यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना, तो बात ही नहीं है, वो है निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है, मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला, वे तो है ही भक्ति मार्ग, मीरा भी अभी कहां ना कहां है, उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्तिन होगी, हम भी मतलब उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर वो पक्की भक्तन होगी, क्योंकि कहानी है ना दुनिया में, तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे, शिव बाबा तो नहीं कहेगा ना ये लाइन, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ना ये सारी बातें, बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूं, आपसे पूरा वर्षा लूंगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूं, तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे, अगर बलिहार नहीं जाएंगे सोतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे, मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। नंबर दो, श्री मत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। विकारों के बंधन से भी मुक्त करना है और कर्म बंधन से भी मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की तोड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न सिद्धि की झलक और पलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति, चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और पलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वे चमक थी। जो धनोजीवत वो चेहरे पर चमक दिखाई देती है। यहां तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और पलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वे हैं जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहे, खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।